आपसे ये चाहेंगे कि आप अपने कार्यक्षेत्र के बारे में कुछ बताएं।
कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने पहला जो काम शुरू किया वो नेशनल स्कूल बम्बई की थी, उसमें अध्यापक के रूप में दाखिल हुआ। और उसके साथ ही साथ हम लोग राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करने की दृष्टि से विद्यार्थी और शिक्षक मोहल्ले मोहल्ले में जुलूस निकालते थे, हमारे कंधे पर खादी के थान लेके घर घर घूमते थे और चरखा का भी वितरण करते थे और चरखा क्लासेस भी हम चलाने लगे थे। इस तरह से एक तरफ से हम विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, दूसरी तरफ से लोक शिक्षण का कार्य भी हमारा 1921 से शुरू हुआ। कांग्रेस के काम में ये सब कार्यक्रम शामिल थे, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस का कार्यक्रम था वह असहयोग आंदोलन का ही कार्यक्रम था। इसलिए मेरा कार्यक्षेत्र इस तरह से हिंदू मुसलमानों में एकता, खिलाफत के समर्थन, चरखा और खादी का ऐसो फैलाव, अस्पृश्यता निवारण का काम, इस तरह के कामों में हम लोग लगे थे। तो विद्यालय में मैं निशुल्क काम करता था, हम लोग कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, ऐसे मेरे कई मित्र थे। तो ये हमारा कार्यक्षेत्र पहले से रहा। बाद हमारा ध्यान रियासतों की तरफ गया था। मैं उस समय बम्बई में काम करता था, लेकिन बम्बई में सिरोही रियासत के जो भाई बहन रहते थे उनके साथ हमने एक प्रजा मंडल की स्थापना बम्बई में की थी, और उसके द्वारा हम हमारे रियासत के गांवों में कुछ दवाई का काम, रियायत का काम, राहत का काम और जागीरी जुल्मों में से लोगों को बचाने का काम बम्बई में बैठे बैठे जो कुछ हो सके वो करते थे। लेकिन हरिपुरा कांग्रेस जब हुई और हरिपुरा कांग्रेस में ये जुम्बेश उठाई गई जिसमें जय नारायण जी व्यास वो भी प्रमुख थे, पट्टा भी सीतारामैया भी थे, और इस तरह से रियासतों के प्रश्नों को लेकर हरिपुरा कांग्रेस में आखिर में ये तय करवाया कि हम लोगों को रियासत में जाके भी कांग्रेस का काम करना चाहिए, सिर्फ खादी का ही काम नहीं, अलग अलग हमारे भाई अपने अपने रियासतों में गए। मैं भी 1938 में मेरी छोटी सी रियासत राजस्थान की सिरोही रियासत में गया और वहाँ बार बार गांवों में जाता रहा और गांवों के लोगों के साथ बातचीत करता रहा, वहाँ भाषण भी देता रहा। इससे जागीरदार और वहाँ के राजा वो चौकन्ने हो गए और उन्होंने देखा कि अब तो हमारे वहाँ भी ये कांग्रेस वाले आ गए हैं और क्या न क्या ये लोग करेंगे, इसलिए उनकी नज़र हमारी ऊपर दौड़ी। हमने मैं एक बार मेरे ज्ञाति सम्मेलन में गोल नाम के गांव में जो सिरोही रियासत से 10 मील दूर है उस गांव में ज्ञाति सम्मेलन में गया था। रात को करीबन 11 बजे सोया था, तब एक भाई आके मुझे जगाने लगा और मुझे कहने लगा कि आपसे खास बात करनी है। मैं समझ नहीं पाया कि रात को ये कौन भाई है, मैं उनको पहचानता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अब आप यहाँ आ गए हो सिरोही रियासत में, तो आप ऐसो सिरोही खास में आइए और वहाँ एक भाषण दीजिए। मैंने कहा कि कौन इसकी व्यवस्था करेगा। उन्होंने सारी हकीकत मुझे बताई और वो हमारे भाई थे धनराज तातेड़, वो आज भी है और वो पक्के निष्ठावान प्रामाणिक और एक अच्छे शुद्ध अंतकरण के कार्यकर्ता। उन्होंने मुझे रात को ये कह दिया कि आप परसों के रोज़ आइए और हम लोग सब तैयारी करेंगे और फलाने जगह हम आप लोगों को मिलेंगे और वहाँ से फिर आपको नगर में ले जाएंगे जुलूस के रूप में। मैंने हाँ कह दिया और इस तरह से मैं वहाँ से ज्ञाति सम्मेलन में से वहाँ सिरोही में गया। लोगों के मन में ये था कि अब ये कांग्रेस के नेता हैं, गोकुल भाई हमारे रियासत के ही हैं, यहाँ के गांव में जन्मे हुए हैं, वे हमको मार्ग दिखाए कि हम किस रीत से जागीरदारों के जुल्म का सामना करें और रियासत में जो गवर्नमेंट माने छत्रछाया में जो राज की स्थापना करनी है वो कैसे करें ये बताएं। इसलिए उन्होंने मुझे आग्रह करके वहाँ सिरोही बुलाया और सिरोही जब मैं गया तब लोगों में एक तरह से बहनों में भाइयों में बच्चों में एक तरह से उत्साह मैंने देखा और मैं अनजान एक तरह से आदमी था, फिर भी उनको कांग्रेस के प्रति भक्ति थी और ये भी भक्ति थी कि अब हम लोगों को कुछ काम करने का मौका मिलेगा और कुछ मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो उसी रोज़ रात को एक सभा हुई थी और उस सभा में मैंने भाषण दिया था। वो भाषण का सो विषय वैज्ञानिक दृष्टि, हमारी वैज्ञानिक दृष्टि, इस वैज्ञानिक दृष्टि पे भाषण करीबन घंटा सवा घंटे का हुआ और उस समय वहाँ जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष राज के ही आदमी थे जिनको राव राजा कहते हैं, माने रखात के पुत्र देवड़ा शंभू सिंह जी वो अध्यक्ष थे। वो आज भी जिंदा है और उन्होंने हिम्मत की, वो एम ए एल एल बी तक पढ़े थे लेकिन उन्होंने हिम्मत की और अध्यक्षता उन्होंने की और उस चौक में मैं भी बोला और वहाँ के कुछ जवान लोग भी बोले। इसलिए मुझे भी आशा लगी कि यहाँ एक टीम बन जाएगी और ये टीम काम करने लगेगी। इस तरह से मेरा जाना आना सिरोही रियासत में रहा और 1939 में एक ऐसी घटना बनी, क्योंकि जागीरदार लोग और राजा खुद और राजा के अफसर जो चापलूस थे वो लोग घबरा गए थे और उन्होंने सोचा कि इन लोगों की प्रवृत्ति अब आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए। इसलिए 1939 की 22 जनवरी के दिन उन्होंने जो 7 आदमी हम लोग थे वो 7 आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वगैरह के जमात इकट्ठे की और वहाँ के मैजिस्ट्रेट जो सिटी मैजिस्ट्रेट थे वो आए और बहुत दूसरे दूसरे बेचारे ऐसो हमारे पास आए और हमको कहने लगे कि आपको गिरफ्तार करने हम आए। हमने कहा कि बड़ी खुशी के साथ हम गिरफ्तार हो जाएंगे। अब ये गिरफ्तारी हमारे 7 आदमियों की हुई जिसमें आज भी मौजूद हैं ये धनराज तातेड़, पुखराज सिंघी, धर्मचंद सुराणा, ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। दूसरे कुछ लोग हमारे बीच में से भगवान के दरबार में पहुंच गए हैं। लेकिन हम लोगों को गिरफ्तार किए ये तो एक है सो घटना है, लेकिन उसके बाद में हमारी बहनों ने अपने हाथ में झंडा लिया और उन्होंने एक तिरंगा झंडा बना लिया। वो तिरंगा झंडा कांग्रेस का था, उस झंडे को उन्होंने ऐसो हमारे प्रजामंडल का झंडा और प्रजामंडल की स्थापना उन्होंने कर दी। हमने तो स्थापना अभी नहीं की थी लेकिन उन बहनों ने फिर हमारी गिरफ्तारी के बाद जुलूस निकाले اور روز جلوس نکالتے رہے، گلی گلی میں ایسو یہ آواز ایسو پہنچاتے رہے، اور پرجا منڈل کی جے، کانگریس کی جے، گاندھی جی کی جے، اس طرح سے نعرے لگاتے لگاتے ایک نئی جاگرتی سروئی میں آئی، اور سروئی میں آئی اتنا ہی نہیں لیکن سروئی کے آس پاس کے گاؤں میں بھی وہ ہوا پھیل گئی، اور اس طرح سے ساری ریاست جو کہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، 400 ہی گاؤں کی ریاست تھی، لیکن 400 گاؤں میں وہ سروئی کی آواز پہنچ گئی، اور ہم لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں لے گئے۔ اب وہ جیل تو کیا تھی، ہم تو ایک طرح سے ہر شام کو 5 بجے سے جیل کے باہر آنگن میں بیٹھتے تھے، اور لوگ ایسے وہاں آ کے ایک سبھا کے طور پہ بیٹھ جاتے تھے، اور ان لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ بس آپ نے جو کچھ کیا ہے اور پرجا منڈل کی استھاپنا کی ہے، یہ استھاپنا امر رہے گی، اور اس کے موافق گاؤں گاؤں میں آپ لوگ پرجا منڈل کی استھاپنا کروائیے، اور دیکھیے کہ ہم لوگ ہمت نہ ہاریں، اور ہم جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں گاندھی جی کا، وہ گاندھی جی کا سوراج کا کام ہمیں کرنا ہے۔ یہ ترنگا جھنڈا ہمارا سب جگہ پھیرتا تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی راجا کو اور پولیٹیکل ایجنٹ وغیرہ کو بہت کچھ ایسو گھبراہٹ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سچ مچ اب بہت کانگریس کا ہی کام اندر چل رہا ہے۔ اس لیے ایک بار ہم سبھا کر رہے تھے سروئی میں، سبھا کر رہے تھے سروئی کی کنک واؤ پر، وہیں ہوتی تھی، وہاں سبھا ہو رہی تھی، اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آج کچھ ایسو اس طرح کا گھٹنا، اس طرح کی گھٹنا ہوگی، ہمارے اوپر آکرمن ہوگا، یہ کوئی ہمیں خیال نہیں تھا، لیکن ہم ہمارا جھنڈا لے کے اس سبھا میں گئے تھے، اور ہمارا بھاشن جو روز کا چلتا تھا ویسا بھاشن میں نے دیا تھا، جھنڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ ایک دم وہاں کا سپرنٹینڈنٹ جو مسلمان تھا محمد حسین، وہ آیا اور میرے ہاتھ سے جھنڈا چھیننے کی انہوں نے بہت کوشش کی، میں نے بھی اس جھنڈے کو پکڑ رکھا اور چھوڑا نہیں، لیکن آخر میرے ہاتھ پہ، میرے سر پہ ڈنڈے پڑے تھے، اور وہ ڈنڈے پڑنے کے ساتھ میں تھوڑا سا بے ہوش بھی کہیں ہو گیا، اور وہ جھنڈا ایسو انہوں نے چھین لیا تھا۔ لیکن وہ جھنڈا چھیننے کے بعد اور جھنڈا چھیننے کے ساتھ ہی ساتھ جو بہنیں اور بھائی بیٹھے تھے انہوں نے کچھ پتھراؤ بھی کیے تھے، اور پولیس کو بھی لگا تھا، اور بیٹھے ہوئے جماعت تھی پریکشک ورگ ان میں بھی کسی کو لگا تھا، لیکن یہ ایسو واقعہ ہو گیا رات کو۔ لیکن دوسرے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ملے تو ہم نے کہا کہ بھائی اپنا جھنڈا تو یہ لے گئے، لیکن لے کیا گئے، اب تو ہمارا چھوٹا جھنڈا ہمارے سینے پر رہے گا، اور ہر ایک ریاست کے آدمی کے سینے پر رہے گا، اور یہ جھنڈا ہم ایسو لگائیں گے۔ تو اسی سمے ایسو درزی وغیرہ کام میں لگ گئے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے جھنڈے ایسو بنائے، ہزاروں کی تعداد میں وہ جھنڈے بنے، اور وہ جھنڈے ہمارے سینے پر رہے۔ ہمارے آپ کو پرجا منڈل کے دفتر پر تو جھنڈا وہی تھا، لیکن ہر ایک کے سینے پر وہ جھنڈا راشٹری جھنڈا۔ اسی روز پولیٹیکل ایجنٹ بھی آیا تھا، اور پولیٹیکل ایجنٹ نے ہمیں بلایا اور مجھے کہا کہ یو وانٹ اے فلیگ، میں نے کہا یس وی وانٹ اے فلیگ، بٹ وی وانٹ اور ٹرائی کلر فلیگ، نو ادر فلیگ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کا فلیگ ہے، وہ تو فلیگ ہے ہی ہے، آپ لوگ ایسو ریاست کے نیچے استھاپنا کرنا چاہتے ہو تو ریاست کا ایسو جھنڈا لیجئے۔ نہیں، ہم نے کہا کہ ہمارا سارجنک کام میں جھنڈا تو ترنگا رہے گا، اور جب ہم کو سوراج مل جائے گا تب کی بات اور ہے، لیکن ابھی تو ہم اور کوئی جھنڈا نہیں لیں گے، ہمارا راشٹری جھنڈا یہ ترنگا جھنڈا ہی لیں گے۔ یہ ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے میرے سر پہ جو لگا تھا اس کے بارے میں پوچھا کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے ان کو بھی صاف کہہ دیا کہ ہم ترنگے جھنڈے کے سوائے اور کوئی جھنڈے کا سویکار نہیں کریں گے، تو ہماری اجازت لے کے سبھا کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کی اجازت بھی اجازت نہیں دیں۔ सभा करने के लिए कोई इजाजत नहीं है। अब उस समय ये राजा ने जागीरदारों को इकट्ठे किए और जागीरदारों को कहा कि देखो ये आए हैं, ये खुराफात करते हैं, ये लोग बगावत करने वाले लोग हैं और हम लोगों को तो अंग्रेजों का वो रखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अब हम लोगों को इनको अपने अपने गांव में नहीं आने देना चाहिए। मैं तो मेरी रियासत के खालसा गांव हैं उसमें उनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा, लेकिन आप लोग जागीरदार लोग अपने गांव में मत आने दीजिए, सभा मत करने दीजिए और सभा करें तो मारपीट कीजिए। इस तरह से उन्होंने जागीरदारों को भी ऐसो हिदायत की, उकसाया और ये जागीरदार एक बार सिरोही में आए और सिरोही में आके फिर मैंने सिरोही में आए तो मैंने उनको लिखा था कि ये प्रजामंडल किस काम से है, प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है, कोई आपकी जागीरी हम छीनने नहीं आए, लेकिन जागीरी गांवों में या खालसा गांव में जो वेट बेगार है, लाग है, टैक्सीज हैं, ये सब टैक्सीज को बंद करवाना और रेवेन्यू सिस्टम एक नई दाखिल करवाना, जो बिगोटी सिस्टम है वो दाखिल करवाना, ये सारे काम हमारे हैं और छत्रछाया में हमें स्थापन करना है राज्य, इस तरह से हम काम करने आए हैं, ऐसा एक पर्चा लिख के उनको मैंने दिया, वो प्रसिद्ध भी किया। अब वो लोग तो बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि गोकुल भाई को बुलाए और जरा दम दाटी दे तो वो समझ जाएगा कि ये तो जागीरदार आए हैं और अब ये ऐसो वो हो जाएंगे नाराज, तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। मुझे अपने सभा में बुलाया, सब बैठे थे, सब ऐसो सोना नवीस थे, जिनके पैर में सोने की लंगड़ी वगैरह रहती थी, ऐसे बड़े जागीरदार थे, छोटे थे और अपनी दरवाज वगैरह लेके सब बैठे थे। तो मुझे कहने लगे कि आप क्या कर रहे हो ये सब। मैंने कहा हम तो एक आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जी के तरीके पर आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं और लोगों के ऊपर जुल्म है वो सब हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने लगे आप जानते हो ये राज कैसे मिला है, हमने हमारी तलवार के बल से लिया है। हाँ, मैंने कहा आपने लिया है और आपको जो कोई जागीरी मिली है वो इनाम में मिली, राजा को आपने मदद की वगैरह, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो खबरदार है कि हमारे गांव में आप लोग आए तो, और देखो तुम तो ब्राह्मण के बच्चे हो ना, हमारे गुरु हो, इसलिए आपको तो हम मारेंगे नहीं, लेकिन आप अपने सो साथियों को कह देना कि अगर हमारे गांव में आए और कोई सभा ववा की तो उनका जान का खतरा होगा। मैंने कहा कोई जान का खतरा मेरा भी होगा, उनका भी होगा, जो होने वाला होगा होगा, आप इसकी चिंता न करें, लेकिन मैंने कहा कि आप जरा इतना इस बच्चे का ध्यान रखिए और इस बच्चे की बात को समझ लीजिए कि ये 1940 की बात है, 1950 के पहले आपकी जागीरी वगैरह रहने वाली नहीं है, ये आपको मैं कह रहा हूँ। तो राजा के राज नहीं रहने वाले और जागीरी नहीं रहने वाली, तो के कौन है जागीरी छीनने वाला, ये देखे हैं हमारी तलवार। मैंने कहा ये आपकी तलवार सब वैसी रहेगी, इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला और ये तलवार तो आप चलाओगे तो वो तलवार आपको ही लगने वाली है, ये मैं आपको कहता हूँ, मुझे आपको और कुछ कहना नहीं है। आप लोग अपने सो गरूर में मत रहिए, आप अपने मिजाज में मत रहिए, वो ज़माना अब भूल जाएगी, ये उनको बात मैंने बता दी थी। और मुझे उन्होंने कहा कि देखो आप कहीं भी तो भाषण करने के लिए मत जाइए, रात को मत जाइए, क्योंकि हम लोग तो शराब पीते हैं और शराब पी के मालूम नहीं कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं तो हमको तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। मैंने कहा कोई अर्थ नहीं, एक ऐसो हत्या लग जाएगी तो ब्राह्मण के बच्चे की लग जाएगी, कोई फिक्र नहीं है। अरे नहीं नहीं आप तो हमारे गुरु हो इसलिए आपको तो हमारे बचाना चाहिए वगैरह वगैरह, उनके ऊपर भी जुल्म हुआ था। वो लोग जागीरी गांव में से पास में खालसा गांव में सभा करते, तो रात को जब आते थे तो उन्होंने जागीरदारों ने गोलियां चलाई, जागीरदारों ने एक कार्यकर्ता का कान काट दिया, एक का नाक काट लिया और इस तरह ऊंट पर वो लोग सवारी करके अपने गांव से दूसरे गांव गए थे सभा करने। तो ऐसा वाक्य अभी कालंदरी में घटना हुई है और दूसरी जगह भी हुई है के लोगों को उन्होंने परेशान करना और धमकाना डराना करने का काम किए हैं, वो और जगह भी हुआ है हमारे, फिर भी जुल्म तो ज़रूर हुआ ही है। अब उस समय हमारे 1941 में पिंडवाड़ा में कॉन्फ्रेंस प्रजामंडल का सम्मेलन था, तो उस समय गांधी जी को मैंने लिखा था कि आप तो आ नहीं सकते, लेकिन आप महादेव भाई को या किसी को भेजिए, या जमनालाल जी को भेजिए, किसी को भेजिए, क्योंकि उस समय जयपुर वगैरह में भी तो ये आंदोलन चल ही रहे थे, अलवर में, बीकानेर में, भरतपुर में वगैरह सब जगह आंदोलन शुरू हो ही गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई, मैं तो उनको तो नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं जवाहर लाल जी के साढ़ू भाई पी एन काटजू को भेज सकता हूँ, और वो आए थे। तो इस तरह से राष्ट्रीय नेता की दृष्टि से तो वो आए थे, लेकिन गांधी जी हमारे आंदोलन का बरोबर ख्याल रखते थे, और वो कहते थे कि गोकुल भाई जहाँ चलाएंगे वो अहिंसक आंदोलन होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इसलिए मेरे बारे में उनको इतनी तो श्रद्धा थी। और जो किशोरलाल मशरूवाला थे, वो हरिजन सेवक संघ वगैरह चलाते थे, उन्होंने भी हमारे आंदोलन के सिरोही के आंदोलन के बारे में ध्यान रखा था। अब उसी समय का था, और किशोरलाल भाई ने भी लिखा था, जब ये लाठीचार्ज हुआ है, झंडा वगैरह लिया गया, तब की बात भी उन्होंने मुझे 41 की बात, 40 और 41 के बीच, वो वैसे तो कटिंग कहीं होगा मेरे पास पड़ा होगा, वो आप भेज दें। अभी कुछ सामग्री तो मेरे पास, जैसे आबू वापस लाने का आंदोलन, तो वो सामग्री तो मेरे पास है। प्रजामंडल की स्थापना और प्रजामंडल के बाद जो सम्मेलन वगैरह हुए, आबू रोड का सम्मेलन, पिंडवाड़ा का सम्मेलन, हाथल का सम्मेलन वगैरह, दूसरे जो सम्मेलन हुए उसकी रिपोर्टें वगैरह हैं, और वो उन रिपोर्टों के बारे में हमारे पुखराज जी सिंह जी एडवोकेट, वो कुछ आपको ज़्यादा बता सकेंगे, और उनके पास कुछ कागजात होंगे। मेरे पास भी कुछ कागजात तो है, लेकिन वो या तो कुछ बम्बई में पड़े हैं, कुछ कहीं पड़े हैं, अब उसको मैं सब एकत्र नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो अगर एकत्र कर लूँगा तो आपको दूँगा।
आप मुख्यमंत्री भी हैं।
क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब हम जेल से मुक्त हुए, और जब क्रिप्स मिशन की बातें चलने लगी, लॉर्ड माउंटबेटन भी फिर आ गए थे, और तो उस समय राजस्थान में राजस्थान कार्यकर्ता संघ था, और उस समय हम लोग काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना तो भरतपुर में 1948 के जून में हुई, और उसके पहले ये राजस्थान कार्यकर्ता संघ काम करता था और रियासतों में जाता था, और जहाँ जहाँ कहीं जुल्म होते थे वहाँ हम लोग तो राजाओं से मिलते थे और अफसरों से मिलते रहते थे। उस समय ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की शाखा भी अपने राजस्थान में हुई थी, और उसमें जयनारायण जी व्यास, हीरा लाल जी शास्त्री, माणिक लाल जी, मैं और भी दूसरे मित्र, गोकुल लाल असावा, ये सब मित्र भी उस समय थे। भरतपुर के सो मास्टर आदित्यनाथ जी थे, जुगल किशोर जी चतुर्वेदी जी थे, भोलानाथ मास्टर थे, चिरंजी लाल जी सो शर्मा थे, फिर डॉक्टर सो धौलपुर के मंगल सिंह जी थे, ये सब ऐसे लोग सब हम थे, और बीकानेर के रघुवर दयाल जी गोयल थे, और उस समय भोगीलाल पंड्या वगैरह उस वहाँ थे, यहाँ अभिन हरी जी वगैरह थे, ये इस तरह से अलग अलग जगह रियासतों में, गोपा था जैसलमेर का जिसका आपने सुना ही होगा, जोधपुर में तो कई लोग थे कार्यकर्ता, सिरोही में भी हमारे थे कार्यकर्ता, तो बीकानेर, भरतपुर वगैरह हर एक रियासत में सब ये फैल गया था, तो वहाँ कार्यकर्ता संघ हमारा था, हम साल में दो तीन बार जगह जगह मिलते थे, और हमारे ऐसो ये कल्पना थी उस समय कि हमको पूरा राजस्थान बनाना है। तो ये कल्पना उस समय की थी, जबकि पूरा राजस्थान बनने की बात तो थी नहीं, लेकिन हमने यही कहा कि हमको हमारा यूनाइटेड राजस्थान, विशाल राजस्थान बनाना है, ये छोटी छोटी रियासतों को एक करके एक राजस्थान बने, ये प्रस्ताव हमने उस समय किया था, और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में और राजस्थान स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में भी ये प्रस्ताव हुआ था। तो ये एक मुख्य घटना है कि जिसमें हमने एक स्वप्न साकार रखा था, और वो स्वप्न आगे जाके 1948 से फिर साकार होने लगा, मत्स्य संघ बना, मत्स्य संघ के बाद फिर सो कोटा का संघ बना, और कोटा के बाद फिर उदयपुर का संघ बना, उदयपुर के बाद फिर ऐसो जयपुर का अपना राजस्थान बना, और जयपुर का राजस्थान बनने के बाद फिर मत्स्य उसमें शामिल हुआ मई में, और उसके बाद फिर ऐसो अजमेर और या सिरोही का विभाजन कर दिया। तो वो सिरोही का विभाजन हुआ, जिसमें आबू ऐसो गुजरात को सौंपा गया और दूसरा हिस्सा राजस्थान में आया। तो ये घटना, तो उस समय एक बात ये आई थी 1948 में, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में, जिसमें स्वागत अध्यक्ष मैं था, दूसरे अपने सभी मित्र थे उसमें, और जो आज जहाँ यूनिवर्सिटी है, जो गांधीनगर, बापू नगर, गजराज नगर, ये सारे हिस्सा मोती डूंगरी से लेके ठेठ ऐसो गांधीनगर तक का हिस्सा, वो सारे हिस्सा हमने कांग्रेस का पेंडोल बनाया था। उसके दो उद्देश्य थे उस समय, रास्ता तो बना हुआ था, आंका हुआ था ही पहले से, क्योंकि जो आज जवाहर नगर जवाहर रोड है, जवाहरलाल रोड, वो सीधा ही ऐसो एरोड्रोम तक जाने की था, वो रास्ता तो बराबर था, लेकिन हमारे मन में ये था कि जो शरणार्थी थे उन शरणार्थियों को भी हम बसाएंगे, और हमारे जो मेहमान आएंगे उनको भी हम रखेंगे, इसलिए उस कांग्रेस में काफ़ी खर्चा हुआ, क्योंकि समतल भूमि करना वगैरह करना वो खर्चा हुआ उसमें, जयपुर रियासत ने और जोधपुर ने, बीकानेर ने, उदयपुर ने, सब रियासतों ने अच्छी मदद दी थी। तो क्योंकि जो जयपुर में तो राजा खुद को दिलचस्पी थी कि ये हिस्सा समतल हो जाए और अच्छा एक हो जाए तो इसकी कीमत बहुत हो जाएगी वगैरह वगैरह। 1948 के पहले और 1948 में उसके पहले सरदार साहब 1948 में और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम लोगों को ख़ास तौर से कहा था कि अब राजस्थान बनने जा रहा है, आप लोग एकजुट से काम कीजिए और राजस्थान को सफल बनाइए, और इस कि देखिए मैं आप लोगों की बराबर एकता में विश्वास रखता हूँ, और आप एक होके काम करते रहिए तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा। इस तरह की ये घटना है कुछ है। और बुला के अबू रोड में बुलाया, तो मुझे मालूम नहीं था कि क्यों आज मुझे बुलाया है उन्होंने, तो उन्होंने बुलाया था इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते थे मुझे कि देखिए हम अंदरूनी तो आप लोगों के साथ हैं, लेकिन हमारे तो ये साफ लोगों का डर है, ये लोग है तो हमारा क्या कर लेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ आदिवासी क्षेत्र में बच्चों की तालीम वगैरह का काम शुरू किया था अबू रोड में, तो उन बच्चों को सारों को इकट्ठा किया, मुझे एक और जगह ठहराया था, और फिर उन्होंने कहा कि ये गोकुल भाई को अब बताओ कि देखो मेरी रियासत में मैं आदिवासियों की कितनी सेवा कर रहा हूँ। तो एक परीक्षा लेने की दृष्टि से सब लोगों को एक कतार में खड़े किए, और वो मास्टर को कह रखा था कि जरा गोकुल भाई आवे तब ये बच्चे कोई गीत गाए, कोई प्रार्थना करे, कोई कुछ करे। इस तरह का एक ऐसा प्रदर्शन उन्होंने करवाया। वो प्रदर्शन तो हो ही गया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बिठाया। ये 1945 के पहले की बात है, और मुझे बैठा के कहा कि देखो अपने आप तो पंडित जी को जाके ये कहना जवाहरलाल जी को कि हमारी सिरोही रियासत में आप जैसा चाहो ऐसा राज स्थापित करना है और उसका आप विधान बना दो, इसके माफिक मैं ऐसा करूँ। जैसे शाहपुरा वालों ने अपना पंचायती राज का किया था और गोकुल लाल असावा को ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाया था, उसके उसी समय के उसके पहले की ये बात है। और उन्होंने कहा कि आप जाइए और मेरी तरफ से ये बात कहिए, और मैं तो चाहता हूँ कि अपने यहाँ शांति रहे, अपने यहाँ स्वराज रहे। और ठीक है, आप कहते हो कि भाई मेरी छत्र छाया में, तो ठीक है छत्र छाया तो है भगवान की। वो बहुत समझदार आदमी था, वो कोई ऐसा तैसा आदमी नहीं था, क्योंकि उनकी जो पुत्री वो जाम साहब की गुलाब कुंवर पत्नी, वो बड़ी ऐसो चतुर, बड़ी बुद्धिमान, और जब जाम साहब ऐसो विलायत में रहते थे तब वो ऐसो सराई जामनगर का कारोबार संभालती थी, और करोड़ों रुपए ऐसो इस तरह से उसने जमा किए थे, और उसमें से कुछ करोड़ रुपया एक्साइज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना था, तो वो भी एक बड़ा मसला है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने रियासतों के कई घरानों से ताल्लुक मेरा रहा है, वो कुछ तो अंदरूनी बात है, लेकिन मुझे दो तीन महारानियाँ इस तरह की लगी है कि जिन महारानियों ने अपने रियासत में एक बहुत ही अजब काम किया होगा और किया था, जिसमें एक तो मैं बीकानेर के तो महारानी की बात कर रहा हूँ, एक जोधपुर की महारानी की बात कर रहा हूँ, और ये तीसरे गुलाब कुंवर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के जिनका मेरा संपर्क आया था।